भाग तीन खंड छ पाश्चात्य देशों के छात्रों के एक समूह द्वारा वेबुसयादो के साथ साक्षात्कार 19 जनवरी 1976। यहाँ हम बता दें कि इसे उकोले द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था। सयाजी उचितिन ने वेबुसयादो को बताया, ये सयाजी उबाखी के शिष्य हैं, 15 विदेशी शिष्य पुरुष एवं महिलाएं। आज सयाजी उबाखी की 5वीं पुण्यतिथि है। 50 भिक्षुओं को आज भोर में ही जलपान दिया गया था तथा लगभग 150 शिष्यों को इस संघदान समारोह में आमंत्रित किया गया था। ये शिष्य अपने विपस्सना शिविरों के लिए पूरे महीने केंद्र पर आते रहे हैं। ये लोग बर्मा में केवल 7 दिनों तक रह सकते हैं, अतः वे 7 दिनों तक ध्यान लगाते हैं, बैंकॉक या कलकत्ता के लिए प्रस्थान करते हैं, फिर यहाँ वापस आ जाते हैं। उनमें से कुछ अपनी दूसरी यात्रा पर हैं, कुछ और अपनी तीसरी यात्रा पर आएंगे। सयाजी उबाखी के निधन के उपलक्ष्य में ध्यान के पाठ्यक्रम की व्यवस्था पूरे एक महीने के लिए की गई है। छात्रों में से कुछ अमेरिका से, इंग्लैंड से, फ्रांस से और न्यूजीलैंड से हैं, बहुत दूर दूर के स्थानों से, कई देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए। कुछ ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और यहाँ मलाया से एक शिष्य हैं। वेबुसयादो ने कहा, यह बिल्कुल हमारे भगवान बुद्ध के समय की तरह है। तब भी वे सभी एक ही समय बुद्ध की उपस्थिति में पधारे थे, एक ही देश से नहीं, एक ही नगर से नहीं, एक ही स्थान से नहीं, किंतु अलग अलग देशों से, विभिन्न नगरों से, उदात्त हृदय वाले सभी पुरुष एक ही स्थान पर एक साथ पहुंचकर भगवान बुद्ध को नमन करने के लिए, चाहे वे मानव हो या दैवी, उत्कृष्ट प्राणी भगवान बुद्ध का सत्कार करने से कभी नहीं थकते थे। अपने हृदयों में आनंद से ओतप्रोत वे भव्य आराधना के साथ बुद्ध की पूजा करते थे। असीम मेत्ता, दया और सभी प्राणियों के लिए करुणा युक्त बुद्ध ने उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने अच्छे और अनुशासित छात्र बनकर मृदुलता एवं विनम्रता के साथ उनकी शिक्षा का अनुसरण और पालन किया। समूचे संसार अर्थात निरंतर पुनर्जन्म में दयनीय भाव से भटकते हुए तथा किसी प्रकार बाहर निकलने का मार्ग ढूंढते हुए अब वे अपनी यात्रा के समापन पर पहुंच गए। समूचे संसार भर जो वे ढूंढते रहे वो अब उन्होंने उसे पा लिया। वे लोग असंख्य थे जिन्होंने बुद्ध के परामर्श का पालन कर निर्वाण प्राप्त किया। अब आप सभी लोग बिल्कुल प्राचीन काल के अन्वेषकों के समान हैं और बिल्कुल उन्हीं की तरह यदि आप वह प्राप्त करने की ठान लें जो उन्होंने किया था तथा यदि आप उत्कृष्ट उत्साह एवं गांभीर्य से लैस हों तो अब इस पवित्र स्थान पर जहां बुद्ध की शिक्षा को जीवित रखा जाता है पहुंचकर जो भी आवश्यक है वह सब करते हुए मृदुलता एवं विनम्रता के साथ शिक्षा का पालन करते हुए समय व्यर्थ किए बिना इस प्रकार कठिन परिश्रम करते हुए इस प्रकार के कठिन परिश्रम करने में सक्षम होते हुए आप जिस पवित्र जीवन के परम लक्ष्य के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं उसे प्राप्त करेंगे। यह कुछ ऐसा है कि आप सभी को इससे हर्षित अनुभव करना चाहिए। मैंने जो कहा क्या वे समझ रहे हैं? मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि क्या वे समझ रहे हैं। सयाजी उचित्तिन ने उत्तर दिया, एक या दो लोग समझ सके होंगे। बनते उन्होंने अमेरिका में कुछ बर्मी भाषा सीखी है। बेबू से आधा बोले, सीखी है? अच्छा, बहुत अच्छा, मैं प्रसन्न हूँ। जो लोग समझ रहे हैं वे अन्य लोगों को इस प्रकार से अनेक लोगों को लाभ देते हुए बुद्ध की शिक्षा पारित कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? वह कौन है जो फर्राटे से बर्मी भाषा में बात कर सकता है? तो शिष्य, आप बर्मी भाषा समझते हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? केवल थोड़ी सी? खैर, थोड़ी सी भी उपयोगी होगी। बुद्ध ने जो सिखाया उसका मात्र अल्पांश भी समझ लेना बहुत लाभदायक होगा। बुद्ध के शब्दों में से केवल कुछ ही शब्द भी वास्तव में कम नहीं हैं। उनका अर्थ महान है। कुछ तो है जिसकी आपने समूचे संसार अर्थात भवचक्र में आकांक्षा की है और जिसके लिए आपने परिश्रम किया है। जब आप बुद्ध की शिक्षा को समझते हैं तथा उनके परामर्श का पालन करते हैं तो आप जिसकी तलाश करते आए हैं उसे आप प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, अब के लिए तथा सदैव के लिए समूचे अनंत संसार अर्थात भवचक्र भर के लिए आपकी क्या प्राप्त करने की अभिलाषा है? अब से मेरा क्या तात्पर्य है? मेरा तात्पर्य तत्काल वर्तमान से है, ठीक इसी क्षण। आप सब अभी दुख से मुक्ति आनंद चाहते हैं, क्या आप सब नहीं चाहते? और आप सब संसार अर्थात भवचक्र में सुखी रहने के लिए आश्वस्त भी होना चाहते हैं, किंतु संसार में सभी पुनर्जन्मों का अर्थ है कि आप सदैव वृद्धावस्था रोग तथा मृत्यु के अधीन होते हैं। इसका अर्थ परम दुख है। आप सभी वृद्धावस्था रुग्णता तथा मृत्यु से भयभीत हैं, हैं ना आप? हाँ, मुझे विश्वास है कि आप सब हैं। भयभीत होने के नाते आप ये सब नहीं चाहते कि क्या चाहते हैं? वास्तव में आप एक ऐसी स्थिति की कामना करते हैं जहाँ ऐसी बातें न हों, ऐसा स्थान जहाँ ये विद्यमान न हो, जहाँ वृद्धावस्था रुग्णता तथा मृत्यु अज्ञात हों, जहाँ इन सभी दुखों की समाप्ति हो जाए, संक्षेप में निर्वाण। आप उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। यदि आप पूर्ण मृदुलता एवं विनम्रता के साथ बुद्ध के निर्देशों का पालन करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्या आप नहीं करेंगे? सफलता प्राप्त कर जिसकी आपको सदैव अभिलाषा थी उसे प्राप्त कर आपने अपने सारे कार्य संपन्न कर लिए होंगे। तो जो आप समझते हैं, हो सकता है कि वह बहुत कम हो, केवल एक छोटा सा संक्षिप्त शिक्षण, किंतु यदि आप उसका लगन से पालन करें तो उपलब्धि छोटी नहीं होगी। यह वही है जिसके लिए आप युगों से प्रयास कर रहे हैं। इसे क्या एक छोटा सा पुरस्कार मात्र माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। वास्तव में यह एक बड़ा पुरस्कार है। एक बार जब आप उपदेश को समझ लेते हैं, चाहे वह कितना भी लघु एवं संक्षिप्त क्यों न हो, और उसका ध्यान से पालन करते हैं तो बिना रुकावट के आनंद आपका होगा। समूचे ब्रह्मांड के लिए, सभी मनुष्यों, देवताओं तथा ब्रह्माओं के लिए आनंद होगा। यद्यपि शिक्षा मात्र कुछ शब्दों की ही हो सकती है, किंतु उपलब्धि महान होगी। आप जो भी चाहते हैं उपलब्ध हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं है? वास्तव में ऐसा ही है। तो शिष्य, क्या आप उस छोटे से निर्देश का अनुसरण एवं पालन कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? बहुत अच्छा। आप लोगों की तरह भगवान बुद्ध के समय में ऐसे लोग थे जो सदैव के लिए शांति तथा आनंद ढूंढने के लिए आगे आए। भगवान बुद्ध के आविर्भाव के पहले से ही वे इसकी तलाश में थे। वे कौन थे? अरे, आप कह सकते हैं कि पूरा संसार, किंतु मैं उदाहरण स्वरूप सारिपुत्र, पाली में सारिपुत्र, एवं मौद्गल्यायन, पाली में मौद्गल्यान की शुभ जोड़ी को आपके लिए चुनता हूँ, जो बाद में भगवान बुद्ध के दो अग्रणी शिष्य हुए। संभव है कि आप उनके भिक्षु बनने की कथा से परिचित हों। सारिपुत्र और मौद्गल्यान अमर पद की तलाश में श्रमण अर्थात भ्रमण कार्यों का पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे तो सारिपुत्र थे जो भगवान बुद्ध से धम्म को सीखने वाले पांच शिष्यों में से एक अश्वजीत, पाली में अस्सजी, के संपर्क में पहले आए। श्रमण सारिपुत्र ने उन्हें भिक्षाटन के लिए इधर उधर जाते हुए देखा। उनकी शांत इंद्रियों को, उनकी स्पष्ट एवं दीप्तिमान त्वचा के रंग को देखकर सारिपुत्र को तत्काल लगा कि जिस मार्ग के ज्ञान की उन्हें तलाश थी वह उनके पास था। जब तक वे अपना भिक्षाटन पूरा कर अपनी भिक्षा के साथ नगर से बाहर नहीं आ गए, तब तक सारिपुत्र ने उस दिव्य भिक्षु का पीछा किया। जबकि पवित्र भिक्षु अपना भोजन कर रहे थे तो श्रमण सारिपुत्र ने एक सम्मानजनक दूरी पर उनकी प्रतीक्षा की। तब सारिपुत्र उनके पास गए, उनको विनम्र नमन किया तथा उनसे उनके गुरु एवं उनके द्वारा बताए गए दर्शन के विषय में पूछा। यह सब पिटकों अर्थात धर्म ग्रंथों में है, किंतु मैं आपको केवल एक संक्षिप्त सारांश दूंगा। यहाँ हम बता दें कि आदरणीय सारिपुत्र तथा आदरणीय अस जी की कथा द बुक ऑफ द डिसिप्लिन वॉल्यूम 4 पाली टेक्स्ट सोसाइटी पृष्ठ 52-54 में वर्णित है। तो सयादों ने आगे कहा, दिव्य भिक्षु ने उत्तर दिया कि वे भगवान बुद्ध के अंतर्गत भिक्षु बने थे जो उनके आचार्य हैं तथा वे भगवान बुद्ध के दर्शन का पालन करते हैं। जब सारिपुत्र ने उस धम्म के विवरण का आग्रह किया तो पवित्र भिक्षु ने कहा, अभी थोड़े दिन हुए ही मैंने प्रतिज्ञा ली है अर्थात भिक्षु बना हूँ। मैं इस धम्म एवं अनुशासन से अभी अभी जुड़ा हूँ। मैं धम्म की शिक्षा विस्तार में तो आपको नहीं दे सकता, मैं इसका अर्थ केवल संक्षेप में आपको बता सकता हूँ। वास्तव में ये पवित्र भिक्षु अपने सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुँच गए थे, अतः वे संपूर्ण धर्म को अवश्य जानते रहे होंगे, किंतु विनम्रता के कारण उन्होंने अल्प ज्ञान ही स्वीकार किया। तब सारिपुत्र, जो बाद में भगवान बुद्ध के धम्म के मुख्य प्रतिपादक बने, ने कहा कि उन्हें अधिक नहीं चाहिए था। वे बुद्ध की शिक्षा का अल्पांश मात्र ही सुनना चाहते थे। पवित्र भिक्षु ने उनका अनुरोध स्वीकार किया। उन्होंने उन्हें धम्म का एक संक्षिप्त प्रारूप मात्र दिया। वह कितना छोटा था? वह इतना छोटा था कि एक छंद भी पूरा नहीं था। जब सारिपुत्त ने धम्म का संक्षिप्त वक्तव्य सुना तो उन्होंने कहा कि यह उनके लिए पर्याप्त था, क्योंकि उसके केवल अल्पांश को सुनने के बाद ही उनमें पूरे धम्म का शुद्ध निर्मल दर्शन उदय हो गया। तो शिक्षा केवल कुछ ही शब्दों की थी, किंतु सारिपुत्त की समझ बहुत अच्छी थी। उन्होंने पूरा धम्म समझ लिया। तो शिष्य, आप भी कुछ समझते हैं क्या? नहीं? अच्छा, यदि आप समझते हैं और भगवान बुद्ध की सलाह का पालन करते हैं तो आपकी उपलब्धि अत्यंत महान होगी। स्पष्ट है कि मैं आपकी भाषा तो नहीं बोल सकता, अतः आप शिष्य, यदि आप थोड़ा समझ रहे हैं तो उसे अपने मित्रों को पारित कीजिए, जिससे कि आप सब धम्म के कुछ अंश जान जाएंगे। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हैं। आप सभी ने, आप में से प्रत्येक ने प्रचुर पारमी अर्जित की है। यही कारण है कि आप सब विभिन्न देशों से, सुदूर भूमियों से, यहाँ से बहुत दूर से यहाँ आए हैं। किंतु चूंकि आपने पर्याप्त पारमी अर्जित की है, आप सब पृथक पृथक देशों से एक साथ एक ही समय पर यहाँ पधारे हैं, और यहाँ पहुँचकर आप धम्म के विषय में जानना चाहते हैं। तो आपने धम्म के विषय में सुन लिया है, आपने बुद्ध के परामर्श को जान लिया है, किंतु धम्म को केवल सुनकर तथा याद कर आप संतुष्ट मत रहिए। आप इसका अभ्यास करना चाहते हैं, अतः आप ओज के साथ प्रयास कीजिए तथा इस मार्ग पर चलना प्रारंभ कीजिए। आप आवश्यक वीर्य, पाली में वीरिय अर्थात प्रयास, स्थापित कीजिए, और समय आने पर आप निश्चित रूप से अपने प्रयास के फल का उपभोग करेंगे। निसंदेह अभी ही आपको यह पता है ना? आपको आपकी निष्ठा एवं परिश्रम के अनुरूप परिणाम मिल रहा है। आप सब इस समय यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आपने इसके लिए पर्याप्त पारमी अर्जित की है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि यदि आप धम्म के साथ रहते हैं एवं उनकी शिक्षा का पालन करते हैं तो आप उनके निकट निवास करते हैं। भले ही शारीरिक रूप से आप ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर ही क्यों न हो, दूसरी ओर यदि आप उनके निकट रहते हैं, बहुत निकट, इतने निकट कि आप अपने हाथों से उनके वस्त्र के सिरों को पकड़ सकें, फिर भी यदि आप उनके परामर्श पर नहीं चलते तथा उनके निर्देशों के अनुसार धम्म का अभ्यास नहीं करते तो आप और उनके बीच पूरे ब्रह्मांड की दूरी हो जाती है। तो आप विभिन्न देशों में रहते हैं, दूर, बहुत दूर, और फिर भी आप सब भगवान बुद्ध के इतने निकट हैं। उनके परामर्श का यत्नपूर्वक विनम्रता के साथ पालन करने से आपने जो मनोकामना की है वह पूर्ण होगी। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जिसके लिए आप संसार अर्थात भवचक्र भर में प्रयासरत रहे हैं। ऐसे असंख्य धार्मिक लोग हैं जो इस मार्ग पर चले हैं और उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है। तो आप भी सभी धार्मिक लोग जो विभिन्न देशों से, विभिन्न नगरों से इस पवित्र स्थान पर एक साथ पधारे हैं, यदि आप पर्याप्त प्रयास स्थापित करें और पूरी विनम्रता के साथ लगन से काम करें तो आप भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। यह वास्तव में एक आनंद एवं हर्षोल्लास का अवसर है। आपकी अद्भुत निष्ठा एवं उत्साह को देखकर हम सब प्रसन्नचित होने, जय जयकार करने तथा प्रशंसा करने से स्वयं को नहीं रोक सकते। मैं आप सबकी सफलता की कामना करता हूँ। साधु अर्थात बहुत अच्छा किया है, साधु साधु। दान का उपयोग कैसे करें? आदरणीय वेबुस्यादा का एक अन्य प्रवचन, उन्होंने कहा, यदि आप किसी भिक्षु को दान के रूप में मोमबत्तियां प्रस्तुत करते हैं तो आप उन्हें यह इसलिए देते हैं कि रात्रि में उन्हें प्रकाश मिले, किंतु यदि वे दिन दहाड़े सभी के सामने इस मोमबत्ती को जलाते हैं तो आपको लगेगा कि ये भिक्षु निर्लज्जता के साथ सामग्रियों को व्यर्थ कर रहे हैं। इसे याद रखिए कि आप रखेंगे इस तरह की अनेक बातें हैं। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि वे अपनी संपत्ति के साथ जो चाहे कर सकते हैं, और वास्तव में वे कर सकते हैं, किंतु यदि वे उनका निरर्थक उपयोग करते हैं तो वे उन्हें बर्बाद करते हैं। बुद्ध ने उपदेश दिया था कि जिन वस्तुओं का आस्था के साथ दान दिया जाता है उनका इस प्रकार उपयोग करना चाहिए कि उनका एक अल्पांश भी व्यर्थ न जाए, एक कण भी छोड़े बिना संपूर्ण वस्तु का सदुपयोग होना चाहिए। जब हम दान का इस प्रकार उपयोग करते हैं केवल तभी शासन अर्थात धर्म शुभ्र रूप से प्रकाशमान होता है, जैसा कि उसे प्रकाशमान होना चाहिए। जिसके लिए इस दान की आवश्यकता है उसके लिए इसके अनेक उपयोग हैं। इसका उपयोग वहाँ करना चाहिए जहाँ इसकी आवश्यकता है, वहाँ नहीं जहाँ इससे कोई लाभ न हो। दाता कहेगा, मैं इस इच्छा के साथ देता हूँ कि मेरा दान किसी उद्देश्य के लिए काम आए, किंतु यदि आप लापरवाही से काम करते हैं जैसा कि आप इस समय कर रहे हैं तो आप वस्तुओं को बर्बाद कर रहे हैं। वे बेकार में निरुद्देश्य ही एकदम समाप्त हो जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि उचित रूप से वस्तुओं का उपयोग कैसे करना चाहिए इसकी समझ बहुत सीमित है। मैं जो इस समय आपको बता रहा हूँ, जो कुछ भी कहा जा सकता है वह उसका एक अंश मात्र ही है। हमें जो भी दान श्रद्धा से दिया जाता है उसके समूचे भाग का उपयोग हमें इस प्रकार करना चाहिए जिससे कि मैंने जो ऊपर वर्णन किया है वह न हो। बुद्ध ने जो उपदेश दिए उन्हें आप सभी जानते हैं। एक बार जब हम यह जान जाते हैं तो हमें उन्हें समुचित रूप से व्यवहार में लाने में सक्षम होना चाहिए। हमें इन सब को अच्छी तरह स्मरण रखना होगा। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? यद्यपि व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति का उपयोग कर सकता है तथापि उसे उपयोग करने एवं व्यर्थ करने के बीच के भेद को याद रखना चाहिए। यहाँ तक कि एक छोटा सा अंश भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, यहाँ तक कि एक छोटा सा अंश भी अप्रयुक्त नहीं रहना चाहिए। हमें समूचे का इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए कि उसका प्रयोजन अधिकतम उद्देश्य से हो, प्रत्येक छोटे छोटे अंश से कुछ न कुछ लाभ निकाला जाए। बुद्ध ने जो सिखाया वह अत्यंत लाभप्रद है, किंतु यह तो आप सभी जानते हैं। तो देखिए कि बुद्ध के समय की एक अत्यंत समृद्ध महिला ने कैसे व्यवहार किया। वह एक अत्यंत समृद्ध महिला थी जो सिर दर्द से पीड़ित थी तथा जीवक ने उसकी चिकित्सा की। जीवक ने एक औंश अर्थात लगभग 30 ग्राम मक्खन मंगवाया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक औंश मक्खन कितना होता है? शिष्य ने उत्तर दिया, भंते वह लगभग एक चम्मच भर होता है। सयाजा बोले, किस प्रकार का चम्मच? मैं समझता हूँ कि यह लगभग एक छोटे चाय के चम्मच को भरकर होगा भंते। तो जीवक ने इस मक्खन में औषधि मिलाई तथा धनी महिला से उसकी नाक द्वारा श्वास से उसे ऊपर खिंचवाया। ऊपर खींचने के बाद निसंदेह उस मक्खन में से कुछ वापस बाहर आ गया। जैसे ही उसे इसके बाहर रिसने का अनुभव हुआ, उसने अपनी सेविकाओं को बुलाया और उनसे कहा, अरे बेटियों बेटियों, इसे रुई के फाहे के माध्यम से उठा लो। और उन्होंने ऐसा ही किया। वह तो बहुत थोड़ा सा ही मक्खन था जिसमें औषधि मिश्रित की गई थी। तो आप क्या सोचते हैं कि कितना मक्खन वापस बाहर आया रहा होगा? मुझे लगता है भंते कि केवल उसका आधा वापस बाहर आया था। हाँ, और आप देख रहे हैं, बस केवल उस थोड़े से मक्खन के लिए उसने अपनी सेविकाओं को बुलाया, अरे बेटियों एक रुई का फाहा ले आओ और इस मक्खन को बचाओ। और नौकरानियों को वह करना पड़ा जो उनसे कहा गया था। यहाँ श्रोताओं में क्या कुछ लखपति हैं? कुछ लोग हैं भंते। मेरा तात्पर्य है कि वास्तव में वास्तविक रूप से अत्यंत समृद्ध लोग। भंते, मैं तो कोई लखपति नहीं हूँ, किंतु यहाँ श्रोताओं में कुछ अत्यंत समृद्ध शिष्य हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये लखपति इस महिला की तरह व्यवहार करेंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता भंते। कोई बात नहीं, लखपतियों के बारे में भूल जाते हैं, आपके बारे में क्या? क्या आप ऐसा करेंगे? मैं नहीं करूँगा भंते। क्या आप इतने कम मक्खन के लिए अपनी सेविकाओं को बुलाएंगे, अरे बेटियों एक रुई का फाहा ले आओ और उसे उठाओ? मैं नहीं करूँगा भंते, मैं तो बस उसे पोंछ कर दूर फेंक दूँगा। हाँ, आप फेंक देंगे, किंतु इस लखपति महिला ने उसे बचाया। उसने उसे फेंका नहीं। जब चिकित्सक जीवक ने यह देखा तो उन्होंने सोचा, मैंने चिकित्सा के विषय में इतना ज्ञान अर्जित किया है, किंतु यह महिला मेरी योग्यता के अनुरूप मुझे उचित पारिश्रमिक नहीं देने जा रही है। अब इस महिला को पता था कि जीवक ऐसा सोच रहे हैं और उसने उनसे कहा, आपने मुझे रोगमुक्त कर दिया है। मुझे पता है कि मैं आपकी ऋणी हूँ, मैं यह अच्छी तरह से जानती हूँ, किंतु मैं इस मक्खन को व्यर्थ नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि मैं कुछ भी व्यर्थ नहीं होने देना चाहती, चाहे वह कुछ भी हो। यह मक्खन जिसे मैंने एक रुई के फाहे के साथ उठवाया था अभी भी लाभदायक हो सकता है। कैसे? यदि किसी तरह बिल्ली और कुत्ते आहत हो जाएं, तो यह मक्खन उनके घाव साफ करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। कपास की बत्तियों का उपयोग दीपक प्रज्वलित करने में भी किया जा सकता है। प्रिय चिकित्सक, देखिए, मैं उन वस्तुओं को नहीं फेंकना चाहती जिनका कहीं लाभपूर्वक उपयोग हो सकता है, किंतु चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ कि मुझे आपका आभारी होना चाहिए। अब जाकर जीवक चिंता मुक्त हुए। अपनी कृतज्ञता के कारण उस महिला ने, उसकी बेटियों ने और उसके परिवार ने जीवक को बहुत कुछ दिया। उन्होंने उन्हें पूरे गांव, सेवक और वाहन दिए, कुछ भी नहीं छूटा। उन्हें यह सब इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने उस महिला को रोग से मुक्त किया था। अतः हमें यह स्मरण रखना चाहिए तथा सभी वस्तुओं के उचित उपयोग की क्षमता विकसित करनी चाहिए। मेरा तात्पर्य है, जब हम त्रिरत्न से संबंधित वस्तुओं का उपयोग करते हैं, हमें सभी उच्चतम विधियों में दक्ष होना है तथा यदि हम इनमें विकसित होते हैं तो हमें केवल उतना ही भौतिक लाभ नहीं मिलता। यदि हम सभी वस्तुओं का उचित उपयोग करना जारी रखें तो हमें अन्य लोगों के शब्दों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस विषय में मत सोचिए कि अन्य लोग क्या देख रहे हैं, आपको स्वयं पता चल जाएगा। आपने उन लोगों की चर्चा की है जो श्वेतगांव पगोडा में दिन में मोमबत्ती जलाते हैं। अच्छा, ये लोग किसी यात्रा पर जाने से पहले एक उपहार लाते हैं और वे संध्या होने तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, इसी कारण वे ऐसा करते हैं। यदि कोई जाकर उनसे ऐसा न करने के लिए कहता है, जैसा कि हमने अभी बताया, तो क्या यह उन्हें कुछ नरक में भेजने के समान नहीं है? किसी भी व्यक्ति को लोगों से ऐसा करने के लिए नहीं कहना चाहिए जो उन्हें नरक में ले जाए। क्या कहना चाहिए? अच्छा, आप सभी को पुत्र, पुत्रियां और नाती पोते हैं। आपके पास हीरे और सोने के आभूषण भी होंगे तथा आपके बच्चे उन्हें लेना और पहनना चाहेंगे। आपने जो भी संग्रह किया है उसे आपकी संतानें प्राप्त कर सकती हैं, किंतु क्या आप पहले यह विचार नहीं करते कि क्या वे वास्तव में इन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? हम करते हैं भंते। तो यदि वे पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए अभी तैयार नहीं हैं, तो आपको बस वस्तुओं को सुरक्षित रखना है, नहीं रखना है क्या? आप अपनी अन्य संपत्तियों पर भी विचार करते हैं, अभी ही उन्हें आप क्यों हस्तांतरित नहीं करना चाहते? भंते, क्योंकि बच्चे अभी पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं हुए होंगे। क्योंकि आप स्वयं देखते हैं कि यदि आप उन्हें सब कुछ सौंप दें तो यह उनके कल्याण के लिए नहीं होगा। हाँ भंते, यह उनके लिए संकट भी ला सकता है। और यह समझते हुए क्या आप उन्हें अकेले जाने देंगे? नहीं भंते, हम नहीं जाने देंगे। हाँ, क्योंकि उन्हें वस्तुओं के उचित स्थान पर उपयोग करने का विवेक नहीं है। वे उस बिंदु तक भी पहुंच जाएंगे जहां उन्हें यह भी न पता हो कि अपना उद्देश्य कैसे पूरा करना चाहिए। आप जो कहते हैं उस पर इस समय यदि उन्हें संदेह भी है तो कालांतर में वे समझ जाएंगे। आप उन्हें उनकी पैतृक संपत्ति इस समय देने से इसलिए मना नहीं कर रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि यह उनके पास हो, किंतु यदि आप उन्हें इस समय लेने देते हैं तो वे स्वयं को तथा आपको कष्ट में डाल देंगे और इस प्रकार से उत्पन्न हुए कष्ट पुनर्जन्मों के चक्र में कभी समाप्त नहीं होंगे। बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी वह अत्यंत व्यापक है और अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वह भी उनकी शिक्षा का एक भाग है। यह बुद्ध द्वारा सिखाए गए सील का एक भाग है जो मैं आपको इस समय बता रहा हूँ। वह भौतिक कल्याण के विषय में बस केवल एक छोटा सा अंश है। हमें अपनी त्रुटियों को सुधारना है, केवल तभी हम समझ सकते हैं, शासन को सबल बना सकते हैं तथा दूसरों में भी समझ ला सकते हैं। हमें परिश्रम करना है, जिससे कि जो लोग नरक के लिए बाध्य हैं उनका पतन न हो। भोजन का एक छोटा सा कौर भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, यदि गृहस्थ शिष्यों आप भोजन दान देते हैं तथा मैं उसे ग्रहण करता हूँ, किंतु आप देखते हैं कि मैं यथा योग्य नहीं रहता, तो क्या आपको यह अच्छा लगेगा? भले ही आपको अच्छा न लगे, किंतु आपकी भेंट तो गई। अब यदि आपकी इस अरुचि के विचार के साथ मृत्यु होती है तो आपका पुनर्जन्म कहाँ होगा? अपाय लोकों में बनते। हमें अपना कर्तव्य निभाना है, जिससे कि यह न हो। बुद्ध के समय में समझदार लोग ऐसा करते थे, आप देख रहे हैं, और चूंकि वे इस प्रकार रहते थे वे अत्यंत लाभान्वित हुए। आइए हम सामावती की कथा पर दृष्टिपात करें, जो बुद्ध का दर्शन किए बिना नहीं रहना चाहती थी। वह सदैव उनको पूजती थी, किंतु वहाँ मागंदिया नाम की एक और प्रमुख पत्नी थी जो उससे घृणा करती थी। क्यों? उसके अपने कारणों के कारण। मागंदिया एक ऐसी युवती थी जो दूसरों सभी की तुलना में अधिक सुंदर थी, तो उसके माता पिता को बड़ी सावधानी के साथ उसकी देखरेख करनी पड़ी, क्योंकि वे बहुत धनी थे और धनी लोग अपने बच्चों के लिए उच्च लक्ष्य रखते हैं। वे एक पति की तलाश कर रहे थे जो मागंदिया के समान हो, किंतु उन्हें कोई नहीं मिला। जब बुद्ध कौशाम्बी, पाली में कौशाम्बी आए, तो मागंदिया के ब्राह्मण पिता ने उन्हें देखा और उद्घोषणा की, कोई भी व्यक्ति मेरी पुत्री के योग्य नहीं है, किंतु यह महान व्यक्ति उसके योग्य है। वह भागकर अपने आवास पर पहुंचा और चिल्लाया, अरे शीघ्र ही हमारी पुत्री का श्रृंगार कर उसे तैयार करो। अब सब कुछ ठीक है, मुझे उसके लिए एक उपयुक्त पति मिल गया है, जल्दी करो। जब वह वहां जल्दी से वापस आया जहां वह बुद्ध से मिला था, तो वहां बुद्ध नहीं मिले। अतः निसंदेह वह चिंतित हो गया और उसने महिलाओं से कहा कि चूंकि वे इतनी धीमी थीं, उन्होंने एक अवसर गंवा दिया। यद्यपि बुद्ध ने पीछे एक पदचिन्ह छोड़ दिया था और पिता को वह मिला, अरे यहां देखो, उस महान व्यक्ति ने जिसके विषय में मैंने तुमको बताया था अपना पदचिन्ह छोड़ा है। अतः उन्होंने देखा तथा ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। वह संकेतों को पहचानने में कुशल थी और उसने उससे कहा, जो आप चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता, इस प्रकार का महान व्यक्ति वैसा नहीं है, आप चाहे जो भी कहें। बस कुछ ही समय के पश्चात बुद्ध पिंडपात अर्थात भिक्षाटन से लौट आए और जैसा कि वे चाहते थे अब वहां सभी उपस्थित थे। तब जाकर उन्होंने धम्म का उपदेश दिया जो सभी को समझ में आ गया, किंतु मागंदिया ने अपमानित अनुभव किया और सोचा, यदि वे मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं बाद में अपमान का बदला लूंगी, और उसमें बुद्ध के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। उसके माता पिता ने धम्म को समझा, अकेली वह कुछ भी नहीं समझी। बाद में सामावती की तरह वह भी कौशाम्बी के राजा की महारानी बनी, और जब बुद्ध कौशाम्बी आए तो सामावती ने उनको नमन किया, किंतु मागंदिया ने नहीं किया। उसने सामावती के विरुद्ध षड्यंत्र रचा तथा राजा से सामावती के विषय में अनेक निंदात्मक मिथ्या बातें कहीं। अंततः उसकी कूटनीति से राजा में सामावती के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया और राजा का अभिप्राय उसे एक तीर से मारने का हुआ, किंतु तीर सामावती से दूर मुड़ गया। इस चमत्कार से राजा अत्यंत विचलित हो गए और उन्होंने सोचा, मैं एक संवेदनशील प्राणी हूँ और एक राजा हूँ, फिर भी यहाँ तक कि एक निर्जीव तीर भी पुण्य को पहचानने में जितना सक्षम है, मैं उतना भी सक्षम नहीं हूँ। तथा उन्होंने सामावती से क्षमा प्रार्थना की। सामावती ने उत्तर दिया, महाराज, आपको मेरे आचरण का आदर करने की आवश्यकता नहीं है, बस बुद्ध की ओर जाइए तथा उन्हें नमन कीजिए। इस प्रकार उसने कहा। राजा ने बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया, बुद्ध की शिक्षा को सुना और उनका आदर सत्कार किया। उन्होंने बुद्ध से अनुरोध किया कि वे एक भिक्षु को भेजें जो महल में प्रतिदिन धम्मोपदेश देने में सक्षम हो, तथा बुद्ध ने यह उत्तरदायित्व आनंद को सौंपा। राजा ने सामावती तथा उसकी 500 सहेलियों को परिधान बनाने के लिए वस्त्र दिया, किंतु महिलाओं ने वह सब आनंद को दे दिया। फिर एक दिन राजा ने देखा कि उनकी महिलाओं ने वे वस्त्र कभी नहीं धारण किए जिन्हें उन्होंने उन्हें दिया था, और पूछा कि ऐसा क्यों। महिलाओं ने कहा, महाराज, आपने जो भी हमें दिया था वह सब हमने अपने आदरणीय अनुज आनंद को दे दिया। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न नहीं हुए, किंतु वे शांत रहे। उन्होंने सोचा, ये आदरणीय आनंद केवल अकेले हैं, किंतु यहाँ 500 महिलाएं हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों के 500 थान उन्हें दान दिए हैं। वे इन सब का क्या करेंगे, वे कुछ अधिक ही दान स्वीकार करते हैं, और उनकी समझ में नहीं आया। जब राजमहल में आनंद पुनः आए तो राजा उनके पास गए, प्रणाम किया और पूछा, आदरणीय आनंद, सामावती और उसकी सहेलियों ने मुझे बताया है कि उन्होंने अपने 500 परिधानों का वस्त्र आपको दान दिया है, किंतु आप तो केवल एक ही व्यक्ति हैं, आप इतने सारे वस्त्रों का क्या करने जा रहे हैं। आनंद ने कहा, हाँ, मैं अकेला हूँ, किंतु ये परिधान अब मेरे पास नहीं है। ऐसे बहुत से भिक्षु हैं जिनके चीवर घिसकर फट गए हैं, तो उनके पुराने चीवरों का क्या हुआ, राजा जानना चाहते थे। निसंदेह पुराने चीवर भी वही हैं, किंतु चूंकि वे जीर्ण हो गए थे तो भिक्षुओं को उन्हें बदलना पड़ा। उनका चीवर के रूप में परित्याग करने के पश्चात उन्हें बिस्तर पर चद्दर के रूप में प्रयोग में लाते हैं, किंतु पुरानी चादरों का क्या होता है, शैया की पुरानी चादरों से पैर पोंछने के लिए रस्सियों की चटाई बनाई जाती है, वे व्यर्थ नहीं जाती। फिर पुरानी चटाई भी है। फिर सयादा ने शिष्यों से पूछा, शिष्यों, क्या आपको यह सब पता नहीं है। नहीं बनते, हमें यह नहीं पता है। आपको यह पता होना चाहिए, जब चीवरों की दशा खराब हो जाती है तो उन्हें रस्सियों में बदल देना पड़ता है, और रस्सियों से एक कुंडलीकृत चटाई बनाई जाती है। जब चीवर चीथड़े हो जाते हैं और उन्हें धारण कर पाना असंभव हो जाता है, तथा उन्हें चद्दर के रूप में उपयोग कर पाना भी संभव नहीं होता, तो फिर उनसे पैर पोंछने के लिए चटाई बनाई जाती है। अतः यदि चीवर के लिए भी वस्त्र उपयुक्त नहीं है तो उसे बाहर नहीं फेंका जाता, परंतु उसे पैर पोंछने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पैरों को इसलिए नहीं स्वच्छ रखना होता है कि वे सुंदर लगें, अपितु इसलिए कि कोई गंदगी आवास में न आए और क्षति पहुंचाए। मुझे विश्वास है कि आपने पुराने चीवरों के चीथड़ों से बनी इन पैर की चटाइयों को विहार गृहों के द्वार पर देखा है। अच्छा, जब पैर की चटाइयाँ चीथड़ी होने लगती हैं और बेकार हो जाती हैं, तब हमें क्या करना पड़ता है? हृदय में श्रद्धा के साथ हमें निश्चित करना पड़ता है कि जो कुछ भी संघ को दिया जाता है वह व्यर्थ न होने पाए। और ऐसा है कि पैर की चटाई के चीथड़े टुकड़ों को मिट्टी में मिश्रित किया जाता है और उनसे दीवारों को पोता यानी लेपा जाता है। उन दिनों कोई प्लास्टर नहीं होता था और उन्हें दीवारों को वैसे ही बनाना पड़ता था जैसे कि मैंने अभी बताया है। प्लास्टर के स्थान पर वे गाय के गोबर और मिट्टी के मिश्रण को दीवारों पर लिपते थे, परंतु यह मिश्रण अधिक समय तक नहीं टिकता था। उसमें दरारें पड़ जाती थीं और फिर वह टूट जाता था। किंतु यदि चीवरों के धागे उसमें मिले हों तो उसमें दरारें नहीं पड़ती और भिक्षुओं को इस प्रकार निर्माण करना पड़ता था जिससे भवन लंबी अवधि तक चलते थे। आनंद के यह सब समझाने के पश्चात राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आप तो वास्तव में श्रद्धालुओं के दान का सर्वाधिक लाभ लेते हैं। तथा उन्होंने और भी अधिक दान दिया। पहले वे असंतुष्ट थे क्योंकि आनंद ने इतने सारे वस्त्र स्वीकार किए थे, किंतु तब वे समझ गए कि बुद्ध की शिक्षा अत्यंत उत्कृष्ट शिक्षा थी जो लोगों को दुख से बाहर निकाल सकती है, तथा बुद्ध के अनुशासन में दान की गई कोई भी सामग्री व्यर्थ नहीं जाती। इन बातों को जानना चाहिए। यदि कोई यह सब जान जाए तो क्या उसे फिर भी पूछने की आवश्यकता है, आपने मेरे दान का क्या किया? नहीं मनते। हाँ, देखिए, अब जाकर राजा के मन में बहुत आदर उत्पन्न हुआ और उन्होंने दान देना प्रारंभ किया। जिनमें अभी भी श्रद्धा नहीं है, यह उन लोगों में बुद्ध की महान शिक्षा के प्रति श्रद्धा भाव प्रेरित करने के लिए है, तथा जो लोग पहले से ही श्रद्धावान हैं उनकी श्रद्धा में वृद्धि के लिए है। इस राजा के प्रसंग में परिणाम अच्छा निकला। यद्यपि वे अप्रसन्न थे, तथापि वे महिलाओं के समक्ष मौन रहे, किंतु जब आनंद आए तो वे उनके पास गए और उनसे इस समस्या का स्पष्टीकरण करवाया। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तथा वे अपने मन में यह अप्रसन्नता बनाए रखते तो वे प्रगति करने में सक्षम नहीं हो पाते। आप देखिए कि इसका उल्लेख मंगल सूत्र में भी किया गया है। व्यक्ति को भिक्षुओं शिक्षकों के पास जाकर उनका सम्मान करना चाहिए। यह 38 आशीषों में से एक है। इस राजा की एक समस्या थी और उन्होंने इसके बारे में पूछा। जब हमारी बातों का स्पष्टीकरण होता है तभी हम सुधार कर सकते हैं। जब उन्होंने बुद्ध की शिक्षा सुनी तथा उन्हें समझा तो उनकी आशंका सम्मान में बदल गई और यहाँ तक कि उन्होंने संघ को और भी अधिक दान दिया। मैंने जो कुछ भी आपको बताया है वह सब भगवान बुद्ध की शिक्षा का अंश है। शासन के हित में हमें प्रत्येक अवसर पर सतर्क रहना होगा तथा कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यह हमारे लिए शील के अभ्यास का भाग है और यह शासन के हित में है।